और आज वही चरण कमल कहाँ रखा? कुछ अव्यक्त विभाव रात में जिन चरण कमलों को गोपियों ने अपने कुमकुम से रंग दिए, और आज उन चरणों को तुम्हारे सिर पर पड़ रहा है। कैसे कैसे सुंदर स्वभाव उन चरण कमलों को, जिसमें यशोदा जी के गोदी में रख करके उनको दूध पिलाती है, उनके स्तन का ये सब कुमकुम वो भी लगाते हैं, वो सब लग जाए जाती है। ऐसे चरण कमलों को अब तुमने आपने यहाँ पर रख दिया। कौन सा इसने किया? तुम भजन में तपस्या न क्या किया? कहते तपस्या से नहीं होगा, इसने स्नान किया, इससे तो होता नहीं। किस तरह से होगा? साधन भजन करने से? साधन भजन करने से भी साधारण रूप में वैदिक भक्ति के साधन से नहीं होगा। तो कैसे होगा? मैं नहीं कर सकती ये कैसे हुआ, यही तो उनकी हैसियत की कृपा है, यही भगवान की हैसियत की कृपा है। इसलिए बतलाया गया है शास्त्रों में, भगवान की कृपा से ही होता है, भगवान या भक्तों की कृपा से। ये कृपा भी दो प्रकार की होती है, एक कनी बनाई खीर और एक चावल दूध और गुलाब जल और सब चीजें रसोई का पात्र इत्यादि दे करके कह देते हैं कि देखो ये तुम क्या करेगा, रसोई बना करके खाएगा या ठाकुर जी का भोग लगा है खाएगा? तो वो कहता है कि मैं ये ठाकुर जी का भोग जो कुछ लग गया है वही मैं ले लूंगा। तो उसको साथ ही साथ में बना हुआ गरम गरम पूरी कचौड़ी राबड़ी मान भोग खीर चावल दाल तरह तरह की सब्जी भाजा अचार चटनी सब प्रकार की चीज पापड़ तक भी सब कुछ उसमें रखता है। उनको चतुर्मा से छोड़े इस तरह से वो विचित्र प्रसाद खा रहा है और कहा जवाह सौभाग्य, ये अहत की कृपा है। और किसी ने कहा कि नहीं मैं तो अमनिया खाता हूँ, स्वपाकी अमनिया, आप अमनिया चीज ले आइए, क्या चावल ला दीजिए, दाल ला दीजिए, आटा लीजिए और जो जो घी बूरा मैदा ये सब आग चूल्हा लकड़ी मैं अपने आप बना दू। तो उसमें चार पांच घंटे लगेंगे, तो इसमें लंबा समय लगा। और इस काली पर कैसे कृपा हुई? न साधन है न भजन है कुछ है, ये भक्त और भगवान की कृपा दोनों कंबाइंड है, दोनों मिली हुई। क्यों? भक्तों की इच्छा से भगवान की इच्छा और भगवान की इच्छा से भक्त। कार्य को भगवान दमन कर रहे हैं, उसके एक एक क्षण को तोड़ रहे हैं, रक्त उबल रहा है और इतना भारी जो विश्व ब्रह्मांड का मानो भार उस पर आ गया, एकदम स्थिर हो गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गया। सोचा क्या है? ये वही तो नहीं है नारायण जिनको काली उनकी पत्नियां हमारी पत्नियां कहती थी जिनके बारे में, शायद वही थे, नहीं तो ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। और उस समय में वो विचार करने लगा और मन ही मन में नारायण का शरणागत हुआ, उनकी पत्नियों ने देखा लक्ष्य किया, अभी तक तो काट रहा था अब काटता नहीं, अब तो कुछ खेत जैसा इसके भाव आया। तब प्रभु से प्रार्थना, ये मर जाता तो अच्छा था, पहले हमने कहा था आपसे ऐसे पति की जरूरत नहीं है, किंतु नहीं अब इसमें चेंज आ गया, इसलिए प्रभु आप बता दीजिए हम तो विधवा मर रहे हैं और इसको भक्त बना दें और हमारे साथ में रहें। प्रभु को दया आ गई उनकी भावना से और उन्होंने साथ ही साथ प्रतिज्ञा की अपने चरण कमलों को बरफ करके नित्य करते हुए उसको विधान करते। यह है की दया, इस हित की दया के लिए किसी का अंकुश नहीं, जो हमारे ऊपर में क्यों नहीं होगी उसके ऊपर में क्यों होगा, कोई दावी नहीं कर सकता। प्रभु की कृपा कब हो किस पर हो, मैं बहुत सेवा करता हूँ इसलिए हमारे ऊपर में हो जाएगी जरूर, कंट्रैक्ट देकर ये जरूरी क्यों उनकी इच्छा, किसे वो प्रसन्न होते हैं, वो ज्ञान है,
भगवान की स्वतंत्रता,
भगवान की स्वतंत्रता। जमे से जिसको वो वर्ण कर लेते हैं, कर देते हैं, उसके लिए ये नहीं जैसे वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भगवान को मिलता है, ये सब है। इसलिए सबसे अच्छा है साधन में, सब साधन करते हुए भी जो अनुरागी भक्त हैं, उन भक्तों का शरण ग्रहण करके एकांत चित्त से उनका अनुगमन करें, इसे भगवान की कृपा मिले। कालिदास काली के ऊपर में कृपा करने के लिए उनकी पत्नियां ही जो भक्त थी उनके बजट में। ये तो एक तरफ की बात थी ऐश्वर्य दृष्टि से, किंतु इससे भी गोपनीय और रहस्यपूर्ण बात क्या है, उस समय में जब काली कृष्ण को लपेट रहा है, उनको काट रहा है, और ब्रजवासी लोगों को पता लगा उनकी मैया बाप और सबको, तो वो लोग जब आए उनकी क्या दशा हुई ये देखना है, और हमारी ये दशा कब होगी, ये काली की दशा नहीं होगी, हमको ये बता दो उनके माता पिता क्या दो जमुना में प्राण देने के लिए, क्या नहीं, जितने दो गोपी लोग थे वो सब गाये तक भी उनके सखा भी पूजने लगे, किंतु बलदेव जी ने रोक दिया, नहीं तो वो सभी मर गए। ये जो कृष्ण के प्रति ममता है ये हमको जरूरत है, जो जैसा रहेगा वैसा ही ग्रहण करेगा। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा दत्तात्रेय जी का, दत्तात्रेय जी को ये जगत गुरु है, किंतु जैन संप्रदाय के लोग उनके ऊपरी भावों को ग्रहण करके और बिना वस्त्र के ऋषभ देव जैसे भगवत प्रेम में मत होकर के चले जा रहे हैं, कपड़े नहीं है, जहाँ कहीं पेशाब किया, जहाँ कहाँ पैखाना कर दिया, जहाँ कहाँ जो कुछ जो किसी ने दे दिया उसको ले लिया, कोई चेष्टा नहीं है किसी विषय के लिए। अब उनका वो जो भाव था ऊपरी भाव तो ले लिया, वैराग्य का भाव, कपड़े नहीं पहनते दिगंबरी, या नाक पर कपड़े बांध करके चलते हैं, किंतु उससे क्या गंध आएगा, नहीं
चलाया,
इसलिए ये हठ योग है, हठ योग से काम नहीं होता, मन को हठ से जितना ही रोको क्या होगा, और प्रबल वेग से भीतर की तरफ ले जाएगा। तो उनके बाहरी वेगों को दिया, भीतरी भाव को उन्होंने भगवान के प्रति जो उनका प्रेम था ये आने से वैसी स्थिति होता है, इसको ग्रहण नहीं होता, उसी प्रकार से जो जैसा होगा कृष्ण की लीलाओं के द्वारा अपने अपने भावों को लोग ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से गोवर्धन ने गोवर्धन को धारण किया, इसमें इंद्र के ऊपर में कृपा देखते हैं, गैया की बात सुनी उन्होंने, इंद्र पर कृपा की, उसको क्षमा कर दिया। भक्तों क्या देखते हैं, नंद बाबा एक छोटे से बच्चे के लिए अपने कुंभ की रीति को भी प्रत्याग कर दिया, और कृष्ण ने उनके लिए क्या किया, अपना एक रूप दूसरा धारण करके गोवर्धन बन करके आंदोलन कहने लगे, खा रहे हैं कृष्ण ये कह रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, और कह रहे हैं देखो तो इंद्र अभी तक नहीं आया, और ये प्रभु जी हमारे दर्शन देकर के खा रहे हैं, और जो कुछ इच्छा हो वो बर मान और सबको वो बर दे। यहाँ पर गोपों के प्रेम का इसमें कुछ महत्व इसमें है, लीला गोपियों का सुर बराग अभी तक था, उनसे पहली बार दोनों में मिलन हुई, सब लोग निकट से कृष्ण को देखा, इसलिए ये सब लीलाओं का प्रकाश है। एक एक लीला में जाने कितने भाव होते हैं, इस तरह से गोपियों के चिरहरण में मैं उस चिरहरण की लीला को मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ हमारे हृदय में। कृष्ण को जब भी समर्पण कर दिया तो ये शरीर से क्या मतलब, शरीर की लज्जा, घृणा, भय, धैर्य, ऐसा भी कोई जरूरत जो कि समझते मुख्यमान के रूप में यही सब आवश्यक है। वहां पर अश्लीलता कुछ नहीं है, ये प्रेम की रीति है। इसी तरह से जब भी उन पत्नियों के ऊपर ने पिता दी, सब विदाओं को प्रणाम करते हुए उसके गर्भ भावों को उन्होंने प्रणाम आदि नहीं
करना। वार्ता पुरुष से निश्चित है तब उन्होंने प्रतिपादन किया और विशेष करके उन्होंने कहा कि मेरा मैं अपनी उद्धव की और तुम्हारी शपथ खा करके चाहता हूँ कि द्वारकापुरी में रह करके साधन भजन करके उनको पाना संभव नहीं। जब द्वारकापुरी में नहीं संभव है तो कहाँ संभव होगा? वैकुंठ इत्यादि कहीं भी रह करके उसका साधन होना कठिन है। जिस चीज को वो चाह रहे हैं वो दूसरे मैं कहा देखो मैं तुम्हारा एक चीज बतलाता हूँ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। इस बात कहाँ पा रहे हैं?
दरअसल
गोलोक में
वैकुंठ
के ऊपर मैं उसको ये बता रहा हूँ यही से थोड़ी दूर पर पुरुषोत्तम एक धाम है जिसको तुमने सुमंदर में दर्शन किया था पहले। वहाँ जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी के सहित से वो विराजमान और वहाँ रह करके वो वृंदावन में जो डिजाइन करते हैं वहां पर भी करते हैं। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में तुम वहां पर चले जाओ और वहीं रह करके अपने इस भाव को प्राप्त करने की चेष्टा करो।
नारद जी का नाम सुनकर
नारद और उचित ध्यान में रख करके अपने इष्ट प्राप्ति का साधन करें। पुरुषोत्तम द्वारका में यह संभव कर नहीं है। तो यह प्रेम भगवान की कृपा से, धाम की कृपा से या वह ऐसे वैष्णव हो उनकी कृपा से ये मिलता है। कोई साधन के क्रम से लाभ करते हैं ना कोई स्वयं उनकी कृपा से लाभ करते हैं। प्रेम की प्राप्ति में समझो गुरु की कृपा समझो वैष्णव की कृपा सभी को मिलित होकर के सत्य से जुड़ा है। तो इसका प्रेम प्राप्ति का मुख्य कारण यदि अहैतिक रूप में कृष्ण पिता कर दे या उनका कोई भक्त कर दे तो अकस्मात हो जाती है। उस प्रेम को कोई कोई समस्त साधन के द्वारा आलोकता साधु संग नक्षक्रिया अनक्षारु की आसक्ति भाव है। ऐसे साधन के एक दादाता जैसे किसी को बना बनाई साधु जी का भोग खाने को दिया और किसी को दे दिया सामान दे दिया कच्चा बना करके भगवान का भोग लगा करके खाओ किंतु दोनों ही चीज भगवान की कृपा ही है। आटा दाल चावल देना ये भी कृपा है और प्रसाद देना एक जल्दी से बस यही प्रसाद मिला भोजन करने लगेगा और एक को बनाओ आंख जलाओ उसके बाद किंतु दोनों ही भगवान की कृपा है। प्रतिभागियों के अनुरूप अनुरोध होकर के उनका वर्ण करना भी ऐसी वृत्ति का आना भी भगवान की कृपा ही। इस प्रेम को उपार्जन करने के लिए उस भाव के लिए कुछ कारण है। कारण है कि कृष्ण ईश्वर है इस बात को भूल जाओ और कृष्ण के प्रति जो ऐश्वर्य भाव है जब वो प्रभु है मैं साथ हूं भय इस भय को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए सदबंधु का नाता जोड़ लेना सदबंधु जैसा नाता जोड़े नाता क्या मेरे सखा है मेरे बेटे हैं और मेरे ये तीन भाव में से कोई एक भाव जोड़ ले। विशेष करके ब्रज गोपियों के दासी का भाव प्राप्त करने की इच्छा से कृष्ण का साधन करने का नंबर एक हुआ। लौकिक सद्बंधु की भांति उनसे कोई नाता जोड़ ले तो वो भगवान है मैं ऐसा पूछता हूँ ये नाता कैसे जुड़ेगा जोड़ते 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 जैसे जो कि भी संबंध नाता होता है मन से ही जुड़ता है कैसे जोड़ते जोड़ते एक दिन में आ जाएगा कोई भगवान की कृपा से आ जाएगा और फिर नौठा भक्ति का अनुष्ठान करे पंचता भक्ति का या अपने भावों के अनुकूल साधन मुख्य रूप में क्या करे उनके अपने भाव अनुसार वैसे ही नामों का प्रिय नामों का संकीर्तन और मन के द्वारा वैसे ही नामों से युक्त लीलाओं का इसलिए नौगा भक्ति या और प्रकार की विभिन्न प्रकार की भक्तियों का साधन करते हुए अंतरे पर और बाहर में नाम संकीर्तन तो नाम संकीर्तन ऐसा हो जो अपने भावों को उद्दीपन करने वाला हो जो हम चाहते हैं उसके अनुरूप हो और उनकी उन्हीं लीलाओं का ध्यान करते हुए हरिनाम संकीर्तन ये नंबर दो हुआ। और तीसरा है भाई जिस भावना तुम्हारी जैसी भावना है ऐसे ही भक्तों का संग करो उनसे कुछ सुनो और कहो प्रजाति आशय स्निग्ध रसिक सत्तर वैष्णव का संग सभी कुछ कर रहे हैं और ये यदि नहीं होगा तो नहीं ये प्रधान है पहले वो लोग बाकी सबको करा दें यदि ऐसा संग रहे उनके संग में वैसे ही नामों का कीर्तन वैसे ही चिंतन और जो कुछ कराना है वो लोग करा दें इसलिए ये तीसरा है बतला रहे जो ऐसे अपने भावों के अनुकूल स्वजातीय आठ हमारे अंतःकरण में जैसा भाव है
उसी के अनुकूल उसी को उच्च करने वाला अपने से उन्नत भागवत रचित हो, ये जरूर होना चाहिए, नहीं तो लाख जन्म नहीं। ऐसा करने से प्रेम स्वतः सिद्ध हो जाता है, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि बतला है ना, साधु संग्राम से संवाद पर श्रवण मुक्ति के एक पंचम कृष्ण प्रेम जन्मा यही अल्पसंग अल्पसंग से ही हो जाए। गुरु जी अपराध न रहे,
गुरुहाजी के विद्यों में श्रद्धा दुरुस्त बन सके, जब संकल्प भी संबंध कर दिया भाव जन।
किंतु देखो थोड़ा सा प्रकट होने लगे तो उसको और प्रकट जान बुझ कर मत करो, क्या करो भक्ता को उसको पाने की चेष्टा। आप में आंसू आ रहे हैं, थोड़ा सा कभी आने की भावना हुई और जोर से क्या करने लगे, थोड़ा सा आया ना तो उसको छिपाया नहीं करके लोगों को दिखलाते हुए खूब जोर से पहुंचने लगे, मैंने उसे बुला लिया। प्रकट मत करो, यत्न के साथ में इसको छिपाओ। और एक बतला रहे हैं, यह साधन उनकी क्रीड़ा भूमि नहीं, लीला विलास भूमि नहीं होनी चाहिए। वो कहाँ है, ब्रज में, ब्रज के विभिन्न स्थानों में रहकर सदा अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय जल्दी ही प्रेम प्राप्त हो जाए। जो जो बतलाया, क्या क्या बतलाया, पहला बतलाया पढ़ा लिखा ऐश्वर्य ऐश्वर्य ना ऐश्वर्य ज्ञान ही बंधुवत उनसे कोई नाता जो विशेष करके तीनों में से और दूसरा बतलाया नौका भक्ति इत्यादि के रूप में उनका सन्नाम रूप के दादी सुगुप्त नामु प्रवीण रथ नाम दिए। ये अपने मन को उससे की लीलाओं से चिंतन करो मन के द्वारा और जीवा से भगवान नाम कीर्तन करो जैसा पाओ। और तीसरा स्वजाति चिंता आश्रय व्यक्तियों का रसिक वैष्णवों का संग और अपने भावों के अनुकूल भक्तों का संग। पृष्ठभूमि में सदा अपने साधनों का अनुष्ठान करो। और एक बतलाया कि इस साधन में कर्म ज्ञान योग इत्यादि को दूर रखना चाहिए। इसलिए एकमात्र दैन्य होना चाहिए, दीनता, दीनता किसको कहते हैं, समस्त सद्गुणों से अलंकृत होने पर भी सब प्रकार के गुण अत्यंत सुंदर हो, मधुर भाषी हो, बलवान हो, विद्वान हो, समर्थ हो, सब विषय में उसकी योग्यता है तो भी क्या करे, अपने को असमर्थ अधम दीन हीन और अबोध मूर्ख समझे, सब गुणों से सब गुणों का भंडार होने पर भी समर्थ होने पर भी अपने को अत्यंत असमर्थ। जैसे सुबल सीताम मधुमंगल जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा जी की भी रचना कर सकते हैं, शंकर जी को भी वरदान दे सकते हैं, तो भी अत्यंत दीन ही होकर के रहा। ऐसे अपने को असमर्थ अधम और ये अंतिम है भजन क्या दम अहंकार आएगा, मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, बुद्धिमान हूँ, सुंदर हूँ, समर्थ हूँ,
ऐसा विषय में जो क्यों हूँ तो चिंता नहीं रहेगी, चिंता नहीं रहेगी तो ये भाव नहीं मिल जाएगा। देखो स्वयं कृष्ण भी अपने को दीन समझते हैं। ब्राह्मण एक साधारण परमा में आया है तो उसके चरणों में गिर करके उसे प्रार्थना। कोई भी कोई आया उसको सम्मान देते हैं, युधिष्ठ को प्रणाम करते हैं या अपने पूजनियों को सबको प्रणाम करते हैं। अपने को दीन नहीं, इसे स्वयं बुलाने के लिए दीन नहीं होना चाहिए। देखो सबकों को ये जरूरी चीज है, ये साधन बदला रहे हैं। ऐसा जत्न करो, जत्न पूर्वक ऐसा करो जिससे कि किसी काम में कहने में बोलने में कोई चेष्टा करने में कोई विचार करने में सैन्य सब समय बना रहे, कहने में भी सैन्य रहे, करने में भी कीमत आ रहे और विचार करने में भी डेंजर है। ऐसा स्थिर रहने इसके लिए चेष्टा करनी, क्योंकि दैन्य और प्रेम एक ही पर्यायवाची करते हैं। देव को कान रखने की चेष्टा दीनता को रखनी है तो प्रेम भी स्थिर रहेगा। और जहां दीनता गई दम्भ अभिमान आया, मैं बहुत ही जो जो गुणी हूं तो होगा क्या, जो संग हो रहा है किसी वैष्णव का तो कोई थोड़ा सा अनादर कर दिया तो क्या होगा, तो धोखा क्या। अब हम हमारा आदर इतना में दूर आदर नहीं करते, बस सदा के लिए संग दूर हो जाए। वैसे मैं बहुत समझता हूँ, मैं बहुत अच्छा पाकर हूँ, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, मैं बहुत अच्छा आचक हूँ, मैं बहुत अच्छा कीर्तन करने वाला हूँ, मैं बहुत अधिक सुंदर गुणी हूँ। तो जब उसका आदर नहीं होगा तो वो कहेंगे यहाँ पर हम तो जान जाएंगे आदर करेंगे, बस वही होगा इसलिए दीन हो सके दीनता बरकरार रहे स्थिर रहे ऐसा काम करना। इसलिए बोलने से करने से कहने से विचार करने में दीनता की सब समय रक्षा होनी चाहिए। वास्तविक धन्य तो प्रेम की परिपक्व अवस्था नहीं होता है, यथार्थ जो प्रेम होता है सब होता है, प्रेम की परिपक्व अवस्था ही रखने धन्य। जैसे श्रीमती राधिका जी को, गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा जी को, नंद बाबा श्रेष्ठ है या उद्धव श्रेष्ठ है, किंतु अपने को साधारण दीन ही मूर्ख समझते हैं। नंद बाबा कृष्ण को शिक्षा देंगे, शासन भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, किंतु उद्धव इत्यादि नारद जी उद्धव अक्रूर और कोई दूसरा आ जाएगा तो उसको खूब सम्मान करते हैं। माने ये कुछ नहीं, अच्छा तू कह रहा है जो भगवान है तो ठीक है, उनके चरणों में हम आगे होते जाते हैं। कृष्ण से कहेंगे कि नहीं, कृष्ण से नहीं कहेंगे, इसलिए अपने में दीनता लगनी है। दीनता भूषण है, हम लोग के शासन भजन में यही चीज गड़बड़ करता है। हम अभी तक प्रयास नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में अभिमान आ जाता है। वैष्णव का संग और शासन भजन सोने के लिए क्या बात है, सबको और सदार में जाकर के बसते हैं। सर्व ज्ञानी योगियों की आज भूखा खाते हैं, किंतु वैष्णव के यहाँ रहकर के अभिमान आ जाता है, इसलिए नीन बन करके रहना चाहिए। नारद जी बहुत सुंदर सुंदर बातें करें किंतु धारण करना सहज नहीं है, सहज भी है धन्य प्रेम की परिपक्व अवस्था में ही होता है। जैसे कृष्ण के योग में गोपी होने का जो हम लोगों का ये दुर्भाग्य है, हमारा कर्म खोटा था, शून्य का बल नहीं थी, हमको सुकृति नहीं है। कृष्ण बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं, किंतु हम लोगों ने अपने कर्मों से उनको गवा दिया। ये दोष किसका है, हमारा कर्म ही ऐसा था, इस प्रकार से दीन नहीं होकर देगा। जितना ही दंड अधिक होगा प्रेम उतना ही बढ़ेगा, और जितना ही कर्मी कथनी और विचार में अभिमान दम्भ आएगा उतना ही प्रेम दूर हो जाएगा। ये दूसरों के पूर्वक है प्रेम और दंड। देखो मैं क्या कहूँ, मुझे तो प्रेम नहीं है, नारद जी कह रहे हैं। प्रेम का स्वरूप कौन जानता है? प्रेम ही जानता है। तब दूसरा कौन नहीं जानता प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है
बता।
कभी उल्टा भी दिखाई पड़ता है, इसलिए जो उसका स्वरूप लक्ष्य स्वरूप रखा है उसको तो कोई व्यक्त नहीं करता, वो तो प्रेमी के हृदय में रहता है। उसके तथा लक्षण को पता है, किंतु तथा लक्षण देख करके उसका विचार नहीं किया जाएगा, विचार होता नहीं। गाली देना ये क्या चीज है? गाली देना तो ये तो शत्रुता का कारण है, क्रोध अमर्ष ईर्ष्या असूया गर्व अहंकार ये सब क्या है? दोष है ना, सभी दोष है। गर्व करना सब क्या पूरी करना, गर्व ईर्ष्या असूया मात्सर्य द्वेष क्रोध ये सभी क्या चीजें हैं? ये दोष है। किंतु प्रेम में ये सभी चीजें अपनी पराकाष्ठा तक भी उसको देखा जा सकता है। हमने फल चातुरी दी है, जैसे एक समय कृष्ण बंसी बजा रहे हैं गोवर्धन के ऊपर, बड़ी सुंदर मत बंसी की तान खेले। उस समय में ललिता जी भी सुन रही है, सखियां भी सुन रही है, बड़ी संख्या में भी हम सुनने चले। पद्मा जी वहां थी, पद्मा जी दौड़ करके उधर ही जा रहे हैं, देखा जी सारी ये तो कृष्ण के पास में दौड़ करके जा रहे हैं। उन्होंने उसको आज अरे सभी कहाँ जा रहे हैं?
कौन सा
ललिता जी क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? देखो हवा चल रही है और हवा के कीचक माने बांसों के छिद्रों में हवा प्रवेश करके बंसी जैसी बज रही है, उसको सुन करके पशु ही क्यों दौड़ सकते हैं? पशु अबो तुम तो बुद्धिमान है, तुम क्यों डर रहे हो? उसने और गोवर्धन के ऊपर में मेघ है, उन मेघों को श्यामल देख करके कोई श्याम की कल्पना कर ले तो वो पक्षी देगी। अब वो जा रहे थे इनकी बात सुन करके शिकट गई, तो ये सचुच हमको ये दुख बना रहे हैं, तो हम जाएंगे सचुच में ये बात ही बज रहा होगा। ये की जो मैं धारणा रहा हूँ आकाश का मेरी होता है, तो वहां गई इधर में वो आकर के श्रीमती राधिका जी को ये क्या चीज है?
छल
भक्ति में लगाया जाएगा, किसी को छगना चाहिए छल करना चाहिए। इसी तरह से देश और बतला है असूया अमर्ष तर्क है, दोष में गुण और गुण में दोष देखना, ये सब एक ही चीज नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि असूया ईर्ष्या द्वेष
अमर्ष
क्रोध मात्सर्य इत्यादि अलग अलग एक ही चीज है, किंतु एक चीज नहीं है। इसमें सब अंतर सब ब्रह्म के लीला में चरम उपकर्ष के रूप में हुआ, इसलिए तटस्थ लक्षण के द्वारा हम यदि विचार करेंगे जैसे अरे ये प्रेम का अभाव है तो इसको नहीं सुना, इसलिए केवल तटस्थ लक्षण के द्वारा। स्वरूप लक्षण तो भाई जिसको होगा वही समझेगा, और तटस्थ लक्षण कौन समझेगा? उसका प्रेम के तत्व को जानने वाले हैं वो समझेंगे, साधारण आदमी नहीं समझ।
ये इच्छा किसको कहते हैं, इच्छा में दिखता है, इच्छा भी वहां होती है। देखो इच्छा कृष्ण राधा जी और ललिता जी के साथ में प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना गले का सुंदर सोने का हार पहुंचा दे दिया राधा जी के गले, और सुनों का हार लेकर के और चंद्रावली जी के केस में बंधन कर दिया। ये तो आकर्षण से नहीं दिया, किंतु पद्मा जी को अब इच्छा हो गई। तो दुख से मती नहीं, तुमको तो हार पहना दिया और तुमको यहाँ पर केस में थोड़ा सा और तुम अभी तक गिरी हो उनके प्रति क्या। ऐसे ऐसे ये सब चीजें हैं तो इसको कौन जानेगा, वही प्रेमी समझ सकता है। तटस्थ लक्षण के द्वारा सब में विचार, किंतु हम लोगों को तटस्थ लक्षण के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। तटस्थ लक्षण है कि प्रेम होते ही चित्त आर्द्र हो जाएगा। आर्द्र माने
द्रवीभूत हो
जाएगा, हरि कथा सुनने से भगवान का नाम करने से चित्त द्रवीभूत हो। हम लोग का नहीं हो रहा है, व्यक्ति विग्रह को देखने से महाप्रभु और उनके भक्त लोग होते तब देख करके मूर्छित हो जाते, हृदय शांत हो जाते। हम लोग का नहीं हो रहा है इसका मतलब है जो तरह तरह पूर्व जन्मों के अपराध इत्यादि चित्त कठोर है, या दो संग में नहीं बल्कि हम में है। तो तथा लक्षण है अनुभव शक्ति व्यभिचार इन भावों का प्रकार, ये सब तथा लक्षण है। जैसे सात्विक लक्षण शुद्ध तत्व में अंतर में जब कोई भाव प्रकट होता है वही भाव जब शरीर में उत्पन्न होता है उसको सात्विक भाव है। उसका और दो भाग है, चित्तस्थ भावों का, चित्तस्थ माने शुद्ध तत्व के भावों का, और वो भाव और मन में पलगो होगा तब ये इसको बोलता रहता है, इसलिए इसको सात्विक भाव। संचारी भाव स्थाई भाव कहाँ की चीज है, आत्मा की चीज है। स्थाई भाव में की तरफ में जो वर्ष चलते हैं उसको भी उन्नत बनाते हैं, अपने भी उन्नत होकर के फिर उसे मिल जाते हैं, इनको क्या कहा संचारी। संचारी भाव भी शरीर पर भी देखे जाते हैं। इस तरह से ये सब तटस्थ लक्षण है, किंतु वो भाव कैसे पैदा वहां पर हुआ ये कोई नहीं जाता। देखो जब प्रेम हो जाता है तो उसका भी एक तटस्थ ही लक्षण एक और बदला है। शीतल जल जमुना का शीतल जमुना जल दावानल के समय समान अत्यंत शीतल जलन युक्त हो जाता है जमुना का पानी, और बीज अमृत की तरह अमृत बीज की धांति मृत्यु सुख के सब्जी और जीवन धारण करना है तो दुखदायी प्रतीत होता है प्रेम, या प्रेम आनंद युक्त है या बीज युक्त समझा नहीं जाता जिसको हो जाता है। तो प्रेम से प्रेमी अपने प्रभु के संयोग और वियोग को भी साक्षात रूप से विवेचन नहीं कर सकता, जब ये मिलन हो रहा है कि वियोग हो रहा है, उस प्रेम की ये तटस्थ लक्षण है। या प्रेम उसके लिए महा आनंदपूर्ण है अथवा सुमोकुमार है, तुम्हारे लिए समझा नहीं जाता यह प्रेम उत्पन्न हो। उस समय वो साधक उन्मत्त हो जाता है, लोगों की दृष्टि उन्मत्त हो जाता है। इस प्रेम के बिना केवल नौका भक्ति प्रभु को सुख नहीं देती, प्रीति का कारण नहीं बनती। नौका भक्ति यदि कोई नाम संकीर्तन समण कीर्तन स्मरण बंधन पाप श्रवण अर्चन बंधन करे और प्रेम नहीं है ऐसा तो प्रभु को न सुखम विद्युते सुखम स्यात् यदि भूख और प्यास नहीं है
नानों को चार
अनुहार संबंधो यदि नाना प्रकार की पूजा करते हैं हे आर्थ बंधो और उसमें आपकी रुचि प्रेम नहीं है तो प्रभु के हृदय में आनंद नहीं होगा। इसलिए जैसे लवण के बिना साथ और धूप के बिना सुंदर भोजन और बिना अर्थ का शास्त्र पाठ कर रहे हैं, भागवत पाठ कर रहे हैं और उसका अर्थ नहीं श्लोक का समझ रहे और एक आदमी उस अर्थ को समझ करके करता है तो उसमें इसको आनंद आएगा, इसको आनंद नहीं आएगा। और बिना फल के बगीचे में जैसे बगीचा है ना, उसमें एक आम पका हुआ है तो 10 आम पके हुए हैं आम के पेड़ तो उसमें फल लगे हैं और सब पके हुए हैं और हवा लगने से गिरने वाले वो बगान कितना सुंदर सुहावना सरस और मधुर होता है, सब लोग उधर ही दौड़ते हैं। और बगीचे में आम नहीं है, फल पके हुए नहीं है तो वहां पर जाते हैं वहां पर उनको अच्छा नहीं। इसी प्रकार से लवण के बिना साथ, भूख के बिना सुंदर भोजन, अर्थ के बिना शास्त्र और फल के बिना बगीचा कुछ कर नहीं होता है। उसी तरह से प्रेम के बिना ये नौधा भक्ति, 64 प्रकार की भक्ति, पंचधा और त्रिधा भक्ति भी सुसाधारण है। और प्रेम अपने बस की बात नहीं है, ये प्रेम कर निकाल दें ये भगवान के ऊपर। मैंने ये प्रेम के साधारण कुछ लक्षण साधारण जिसको सभी लोग समझते, असाधारण मैंने जो है वो मैंने बतलाया। असाधारण कौन जानता है, वो प्रेमी भक्ति बन जाता है। एक प्रेमी व्यक्ति कहता है कृष्ण से आप चले जाइए और एक प्रेमी व्यक्ति नहीं है, साधारण आदमी है, वो कह रहा है जैसे चले जाए दुर्योधन करा दे चले जाए और गोपियां कराएंगे चले जाए। दोनों में चले जाने के शब्द में अर्थ में कोई अंतर है, भाव में अंतर है, कौन समझेगा साधारण आदमी नहीं पर उसको प्रेमी व्यक्ति ही कृष्ण प्रेमी है नहीं इसलिए समझ जाते हैं। किसी का सुन करके जाओ सुखी हो जाते हैं और चले नहीं जाते नहीं कहने पर भी। और कोई अत्यंत ऊपर से प्रेम सिखला करके कहता है जैसे चले जाओ, यहाँ पर कहेंगे कि रह जाओ तो भी चले जाए। इसलिए इस प्रेम को वर्णन करा मेरे सामर्थ्य से बाहर। इस प्रकार से नारद जी उनको समझाया और उन्होंने उनको द्वारका जाने के लिए पुरुषोत्तम छात्र में जाने के लिए कहा। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप इसको पुरुषोत्तम धाम में जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये उद्धव जी कौन है। नारद की तो बात ही क्या, उग्रसेन की बात क्या, ये कृष्ण को भी परामर्श देने वाले इसलिए बड़े उत्कृष्ट बुद्धिमान है और मंत्री है सलाह देने वाले। इसलिए नारद जी को सलाह देंगे प्रभु आपने ये क्यों कहा उसको जाने के लिए, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए क्यों कहा। इसको आप वृंदावन में क्यों नहीं भेजे, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने से इसका साधन नहीं करेगा और प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। इसको वहां न भेज करके इसको जहां पर यथार्थ में दीनता उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, इसको ऐसे
वृंदावन में भेजिए, मत भेजिए उसको पुरुषोत्तम का, क्योंकि वहां जाने से छप्पन बार तो उसको भोग प्रसाद मिल जाएगा खाने के लिए, और 12 महीने में 13 पर्वन है, पर्व उत्सव होते रहते हैं। एक महीने के अंदर में कितने रोज उत्सव होते रहते हैं, और खाने पीने की सुगमता रहती है, और जगन्नाथ जी का रोज दर्शन प्रतिदिन 10-20 बार पर, उससे कभी भी भिन्नता नहीं आएगी, यह चिंता का विचार कर साधन नहीं हो सकेगा खाने पीने उत्सव में, इसे उसको वहां पर मत भेजिए, वहां पर उसका ये प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, आप वृंदावन में भेजिए, क्योंकि वृंदावन में जब जाएगा तो यमुना को सूखी देखेगा, कृष्ण के समय में जैसे उसमें पानी रहता था उसमें कमल खिलते थे, लहरें चलती थी, बहुत ही सुगंध का पानी निर्मल था, कृष्ण के दीरा में सब कुछ उल्टा हो गया है, पानी भी सूख गया है। अभी देखिए यमुना की क्या दशा है, अब तो बरसात में कुछ पानी भी आ गया है।